ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा द्वारा एमसीसी के बारे में अध्ययन करने के लिए गठित कार्यदल द्वारा अध्ययन की प्रक्रिया शुरू। नेपाल बाल संगठन की सभी चल अचल संपत्तियों को तत्काल महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के मातहत लाने का महिला तथा सामाजिक समिति ने किया निर्देश। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सीमा नाकों पर अपनाई जा रही है विशेष सावधानी। और कोरोना वायरस के कारण चीन के शेयर बाजार में आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। नेकपा केंद्रीय कमेटी की बैठक द्वारा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल के संयोजकत्व में गठित एमसीसी सहयोग संबंधी अध्ययन कार्यदल की पहली बैठक आज काठमांडू में बुलाई गई। बैठक में एमसीसी के साथ समझौते को लेकर कौन कौन से संदर्भों के बारे में अध्ययन किया जाए, इस बारे में विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद रेडियो नेपाल के साथ बातचीत में वरिष्ठ नेता खनाल ने बताया कि पार्टी द्वारा निर्धारित 10 दिनों की समयावधि में ही अध्ययन लगायत काम पूरे कर लिए जाएंगे। प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समिति ने नेपाल बाल संगठन के सभी चल अचल संपत्तियों को तत्काल महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के मातहत लाने का निर्देश किया है। आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक ने ऐसा निर्देश किया और ये बताते हुए कि बच्चों के संरक्षण के लिए संचालित बाल संगठन के काम पारदर्शी नहीं है, बैठक ने इसे व्यवस्थित करने का निर्देश भी मंत्रालय को दिया है। मौके पर सांसदों ने नेपाल बाल संगठन की स्थिति को नाजुक बताते हुए बाल मंदिर की संपत्ति के हो रहे दुरुपयोग के जिक्र के साथ इस पर बाल मंदिर के पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षण भी कराया। संसद की विकास तथा प्रविधि समिति ने निर्माणाधीन सड़कों और पुलों के बारे में सरोकार वालों के साथ विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श के दौरान सांसदों ने ये बातें उठाई कि पुल का निर्माण शुरू होने के बाद वर्षों तक नहीं बन पाता और जरूरत की बजाय पहुंच के आधार पर परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, साथ ही काम में गुणवत्ता भी नहीं आ पाती। उन्होंने स्थानीय सड़कों में देखी जा रही समस्याओं का मुद्दा विशेष रूप से उठाते हुए कहा कि ऐसे निर्माणों पर सरकार का ध्यान नहीं जा सका है। वहीं सड़क विभाग के महानिदेशक किशोर कुमार शर्मा ने कहा कि सड़क और पुल निर्माण की परियोजनाएं हर साल बढ़ाई जाती हैं, लेकिन पहले डिजाइन हो चुके और निर्माणाधीन पुलों के लिए अपेक्षित बजट के न होने के कारण समस्या उत्पन्न होती है। बैठक में बताया गया कि विभाग अंतर्गत दर्ज 2091 पुलों में से 425 पुलों के निर्माण पूरे हो चुके हैं और 16 से पुल निर्माणाधीन हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश की प्रमुख सीमा नाकों में हेल्प डेस्क की स्थापना की है। विमानस्थल सहित सीमा की नाकों में नेपाल प्रवेश करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ ही संक्रमितों की संख्या के मद्देनजर करते हुए टेकू और पाटन अस्पतालों के चिकित्सकों सहित अन्य आवश्यक चीजों की व्यवस्था किए जाने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता महेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ ने दी है। इसी क्रम में बांके की नेपालगंज स्थित जमुनाहा सीमा नाकों में आज से ही हेल्थ डेस्क की स्थापना की गई है। इसी तरह रूपंदेही के भैरवा की सीमा नाकों पर भी हेल्थ डेस्क की स्थापना की गई है। इसी क्रम में बीरगंज भंसार नाकों पर भी हेल्थ डेस्क की स्थापना की गई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने नेपाल टेलीविजन से विश्व समाचार एनटीवी वर्ल्ड मौजूदा आर्थिक वर्ष में ही शुरू करने का निर्देश किया है। नेपाल टेलीविजन के 35वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज सिंहदरबार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बासकोटा ने ऐसा निर्देश किया है। उन्होंने कहा कि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलीविजन राष्ट्रीय समाचार समिति और गोरखा पत्र सरकार संचार माध्यम नहीं बल्कि जनता और राज्य की संपत्ति है। मौके पर नेपाल टेलीविजन के अध्यक्ष डॉ महेन्द्र बिश ने कहा कि नेपाल टेलीविजन तकनीक में रूपांतरण और पहुंच विस्तार के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और कार्यक्रम में सुधार कर केंद्रित है। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ने जिला प्रशासन कार्यालय दोलखा के तत्कालीन जिला प्रमुख जिलाधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल के विरूद्ध अलग अलग भ्रष्टाचार के कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया है। अख्तियार के मुताबिक विभिन्न भय दिखाकर गाली गलौज कर अलग अलग सेवाग्राहियों से अनेक बार रिश्वत लेने के साथ ही कार्यालय में रहकर ही अनुगमन में गए होने के बहाने भ्रमण भत्ता लेने जैसे कई आरोप रिजाल पर लगाए गए हैं। आरोपी रिजाल से 6,52,000 क्लेम्ड अमाउंट भरवाने की मांग के साथ आज विशेष अदालत काठमांडू में मुकदमा दर्ज किया गया है, ये जानकारी आयोग ने दी है। अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने काठमांडू की चंद्रागिरी नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज पौड़ेल सहित दो लोगों को 1,00,000 रूपये घूस के साथ हिरासत में लिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक प्रशासकीय अधिकृत पौड़ेल और ड्राइवर संचित दुलाल ने नगर पालिका के सूचना संचार तथा प्रसारण संबंधी समझौता कर विनियोजित रकम में से बतौर रिश्वत 1,00,000 रूपये लिए थे और इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये बात आयोग के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला द्वारा जारी किए गए बयान में उल्लेखित है। इसी तरह यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सानो भरियांग स्वयंभू काठमांडू में कार्यरत अधिकृत शिवलाल पौड़ेल और उन्हें 13,000 रूपये घूस देने वाले सेवाग्राही दीपक खतीवड़ा को अख्तियार ने गिरफ्तार किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के कारण चीन से बाहर फिलीपींस में कल एक की मृत्यु होने के साथ ही इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 400 पहुंच गई है। इसी तरह चीन के शेयर बाजार में सोमवार को भारी बिकवाली हुई। शेंजिंग कंपोजिट इंडेक्स में 8.5% गिरावट आई है, ये 13 साल में सबसे ज्यादा है। इसी तरह शांघाई कंपोजिट इंडेक्स 7.7% गिरकर 1 साल के निचले स्तर तक पहुंच गया है, ये 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट भी है। दोनों इंडेक्स की गिरावट से निवेशकों को $445 अरब का नुकसान हो गया है। चीन के शेयर बाजार के रेगुलेटर ने कहा है कि बाजार की गिरावट से प्रभावित कंपनियों को 2019 के सालाना और 2020 के तिमाही नतीजे घोषित करने के तय समय में छूट दी जाएगी। चीन में नए साल की छुट्टियों के बाद शेयर बाजार में कारोबार का सोमवार का पहला दिन था। हालांकि शुक्रवार को बाजार खुलना था लेकिन सरकार ने छुट्टी बढ़ा दी थी। चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 17,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय और स्थानीय सरकारें पीड़ितों के इलाज और मेडिकल उपकरणों पर खर्च के लिए अब तक $12.6 अरब की रकम जारी कर चुकी है। इकोनॉमी फॉर कोरोना वायरस का असर कम करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ज्यादा प्रभावित इलाकों में प्रमुख बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरें घटा दी हैं ताकि लोगों को आर्थिक रूप से दिक्कतें नहीं हो। बैंक ऑफ चाइना ने कहा है कि लोगों का रोजगार छिनता है तो उन्हें कर्ज के भुगतान में फिलहाल राहत देते हुए ज्यादा समय दिया जाएगा। पिछले साल ट्रेड वॉर का नुकसान झेल चुके चीन की अर्थव्यवस्था को नए साल में कोरोना वायरस ने जोखिम में डाल दिया है। आर्थिक गतिविधियां तेजी से घट रही हैं। कंपनियों को प्रोडक्शन बंद करना पड़ रहा है। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने पिछले हफ्ते चीन में अपने 42 स्टोर 9 फरवरी तक के लिए बंद करने का ऐलान किया था। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भी शांघाई का नया प्लांट अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के असर से इतना आर्थिक नुकसान होगा इस बारे में अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के मुताबिक चालू तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ में 2% गिरावट आ सकती है। ऐसा हुआ तो जीडीपी को $62 अरब का नुकसान होगा। अमेरिका से ट्रेड वॉर के असर की वजह से पिछले साल चीन की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.1% रही थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एमसीसी के बारे में अध्ययन करने के लिए गठित कार्यदल द्वारा अध्ययन की प्रक्रिया शुरू। नेपाल बाल संगठन की सभी चल अचल संपत्तियों को तत्काल महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के मातहत लाने का महिला तथा सामरिक समिति ने किया निर्देश। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सीमा नाकों पर अपनाई जा रही है विशेष सावधानी। और कोरोना वायरस के कारण चीन के शेयर बाजार में आई गिरावट। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।